يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي ايمان والو اللہ سے ڈرو. اور اب فائنل کہہ دیا وذروا ما بقي من الربا، چھوڑ دو جو ربا میں سے باقی رہ گیا، اب اس کو بس کرو، چھوڑ دو اس کو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا نا کہ جاہلیت کے تمام سود آج میرے ان دونوں قدموں تلے دفن کر دیے گئے، اور سب سے پہلا سود جو جس سے میں دستبردار ہوتا ہوں وہ حضرت عباس کا سود ہے. حضرت عباس بھی اس زمانے کے اندر سود پہ قرض لیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ظاہر ہے قرض دیا ہوا تھا، اور قرض جب لوٹانے کا معاملہ آتا تو سود سمیت لوٹانا تھا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ سود کے ساتھ وہ لوگ واپس نہیں کریں گے، بلکہ اب سود کو میں ختم کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروعات کی کہ میں اپنے خاندان کا سود سب سے پہلے معاف کرتا ہوں، یعنی اب کوئی کسی کو بھی سود دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. کہا جاتا ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عام عرب میں سود کا رواج بہت تھا، ان کی بھی سود پہ ساری چلتی تھی. تو جب اس کی ممانعت آئی تو مسلمانوں نے تو سود کے سارے معاملات چھوڑ دیے، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقموں کے دوسروں پر تھے. اسی میں یہ واقعہ آیا کہ بنو ثقیف جو تھا ایک قبیلہ اور بنو مخزوم تھا، ان میں بھی آپس میں سودی معاملات کا سلسلہ تھا. تو بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا. اب بنو مخزوم تو مسلمان ہو گئے اسلام لانے کے بعد، انہوں نے کہا کہ ہم تو سود کی رقم ادا کرنا جائز نہیں سمجھتے، سود تو ہمارے یہاں حرام ہو گیا. اب یعنی انہوں نے قرض لیا ہوا نا، اب وہ کہتے ہیں ہم قرض واپس تو کریں گے لیکن سود سمیت نہیں کریں گے. تو بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا، وہ تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اگر مسلمانوں سے ان کے ساتھ مصالحت ہو چکی تھی، ان کے ساتھ ٹرمز تھے، لیکن مسلمان تو نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو سود چاہیے نا، وہ تو کافر تھے. بنو مخزوم نے کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہیں کریں گے. یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا نا کہ سود دینا بھی حرام ہے. اب یہ جھگڑا مکہ میں پیش آیا. اس وقت مکہ کے امیر حضرت معاذ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے یہ اس معاملے کو بھیجا کہ یہ اس کا کیا کیا جائے. اس پہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے جتنے بھی پچھلے ان حکم سے نازل ہونے سے پہلے جتنے معاملات تھے نا سودی، وہ سب ختم ہوگا. پچھلا سود نہ لیا جائے گا نہ اب سود دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت عباس نے جو سود کے وہ کیا تھا نا، انہوں نے تو لینا تھا لوگوں سے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. اب کیا ہوگا، ہر ایک بندے کو اس کی اصل رقم ملے گی، جو سود کی رقم ہے وہ نہیں ملے گی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا پہلے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب یہ پتا ہے نا کہ یہ چیز چھوڑنی بہت مشکل ہے، تو پہلے لوگوں کو تیار کیا گیا. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جھجھری دے دی تو ہم ڈر گئے، آئے بڑا ڈر لگتا ہے، نہیں. ایک اپنے جیسے انسان کا، ٹریفک پولیس کا ڈر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کی بریکیں لگ جاتی ہیں. تو اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، ہم کہیں کہ ہمیں اسے ڈر لگتا ہے اور بس اتنی جھرجھری آ جائے اور ہماری بریک نہ لگے، کیا یہ واقعی ڈر ہوگا؟ ہم اپنی غلط کاریاں نہ چھوڑیں، کیا یہ واقعی ڈر ہوگا؟ ایک ٹیچر کے ڈنڈے سے ڈر کے ہم پورا سبق یاد کر کے جائیں اور اللہ کا ڈر ہمیں کچھ بھی نہ کروائے، ہمارا عمل ہی سیدھا نہ ہو، تو کیا یہ ڈر ہوگا؟ تو ڈر تو وہ ہے جو انسان کو اتنا فکر مند کر دے، اتنا پریشان کر دے کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے اور وہ اس گناہ کو آخر کار چھوڑ دے، وہ ہے ڈر اصل میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر دلایا پہلے، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ. और छोड़ दो जो बाकी रह गया रिबा में से। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर वाकई तुम्हारे अंदर ईमान है, अगर तुम अपने आप को जो कहते हो ना हम मोमिन हैं, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, फिर तो तुमको कोई बहस ही नहीं करनी चाहिए, फिर तो कोई बहस की नहीं है गुंजाइश है ना, फिर जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया वो तो दे दिया। तो अब तुम्हें अल्लाह से डर के बाकी तमाम सूद छोड़ देना चाहिए। फइल्लम तफालू, और ये इतनी ज्यादा खौफ दिलाने वाली आयत है, इसके बाद तो फिर किसी की गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि वो कुछ और करे। फइल्लम तफालू, फिर अगर ना तुम करो, फअदनू, तो खबरदार हो जाओ, सुन लो, ऐलान सुन लो, किस चीज का? बेहरब मिनल्लाहि व रसूलिही, जंग के लिए अल्लाह से और उसके रसूल से। अगर तुम ना करो ये काम, अगर तुम फिर भी नहीं छोड़ते हो, इस हुक्म में देखे कितना जलाल है, कितना रोब है। ये किसी आम आदमी से जंग की बात नहीं है, हमें तो कहीं पता चल जाना किसी मुल्क में ही जंग होने का सवाल, कि यहाँ पे कोई जंग का खतरा भी है, तो हम कैसे डर के वहां से भाग जाएं? लोग मूव हो जाते हैं, स्टॉक मार्केटें गिर जाती हैं, हालांकि इंसानों के इंसानों से अभी जंग नहीं हुई होती, अभी सिर्फ खतरा होता है। और ये तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता, जिसका ईमान होना वो सोच भी नहीं सकता, अल्लाह और उसके रसूल से जंग, वो रसूल जिनके भरोसे पे बैठे हैं कि इन्होंने शिफात करानी है, और वो अल्लाह जो रब्बे कायनात है, उसके मुकाबले में क्या कोई आ सकता? इस जंग में सोचे एक तरफ कौन है, ये हकीर कमजोर सा इंसान, और दूसरी तरफ रब, जिसके हम हर हर लम्हा मोहताज हैं, और जिसके इज़्ज़त के बगैर इंसान एक सांस तक भी नहीं, ना अंदर लेके जा सकता ना बाहर ला सकता। और तुम समझते हो कि तुम उसका मुकाबला कर सकते हो? तुम्हारी कहां हिम्मत है, सोच भी नहीं सकते। और वो अल्लाह जिससे हमें हर पल कोई हाजत है, कोई जरूरत है, और उसके आगे हम हाथ उठाते हैं, अगर उसी ने जंग का ऐलान कर दिया, हम किसके पास जाएं? इसीलिए तो फिर दुआएं नहीं कबूल होती। उसने तो जंग का ऐलान किया हुआ है, उसी से आप मांग रहे हैं। एक तरफ ये हाल होता है, कुरान ऐलान कर रहा होता है जंग का, दूसरी तरफ हम अल्लाह रसूल के कसीदे पढ़ रहे होते हैं, नाते पढ़ रहे होते हैं, मिलाद हो रहे हैं, अपनी मोहब्बत साबित करने की कोशिशें हो रही हैं, कुरान खानियां करा रहे हैं, और ये पता नहीं है जो कुरान पढ़ रहे हो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जंग है तुमसे, और लोग मुबारकबादें दे रहे होते हैं, आपने वाह भाई वाह, क्या कारोबार, क्या इनकी सज धज है, और क्या इनके घर है, और क्या इनकी शान व शौकत है। किसी की सूद पे ली हुई चीज को देखकर हम कैसे खुश होते हैं ना, ये नहीं सोचते कि इसने अल्लाह रसूल से जंग ले ली है। एक तरफ अल्लाह अपने हथियार लेके आ गया, और उसको तो ना किसी हथियारों की जरूरत, ना फौजों की, फौज भेजने की भी जरूरत नहीं, ना आसमान से बिजलियां गिराने की, कभी एक मच्छर ही काफी हो जाता है, और कभी छोटे छोटे परिंदे चोंचों में पत्थर लेके बुलेट्स का काम देते हैं, कभी हवाएं हैं जो इंसानों को सर उनके धड़ से अलग कर देती हैं, कभी सिर्फ एक चीख होती है जो कलेजों को फाड़ देती है। तो उसको तो ना किसी फौज की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत। अब ये ऐसी जो सजा है या ऐसी जो बात है ना, किसी और जुर्म के बारे में नहीं आई, ना कत्ल के, ना जिना के, ना चोरी के, ना डाके के, किसी और में नहीं आई कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग लेने के लिए तैयार हो जाओ। और इस मामले के अंदर आई है, वह इन तुब तुम, और अगर तुम तौबा कर लो, मेरा रब कितना मेहरबान कि फिर भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है कि जब कोई बंदा ये सुनेगा तो यकीनन उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि नहीं 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 मैं तो नहीं जंग ले सकती, तो तुम डर जाओगे, फिर डर के तुम्हारा दिल चाहेगा तौबा करने का, तो फिर भी अल्लाह का दरवाजा खुला है, तौबा कर लो। और तौबा कैसे होगी, फौरी सूदी लेन देन छोड़ दो, पिछताओ उस वक्त के ऊपर जब तुमने ये किया। और फिर तुम्हारे लिए क्या है, फलकुम रुउस अमवालिकुम, फिर तुम्हारे लिए क्या है, जो तुम्हारे मालों का असल है, यानी जो तुम्हारी जो रकम है, जो तुम्हारी जो जो कर्ज के लिए तुमने दी है, जो तुम्हारी इनिशियल अमाउंट थी ना, वो बस तुम्हें मिलेगी, असल तुम्हारी रकम, उसके अलावा सूद नहीं मिलेगा। ला तज़लिमूना, ना तुम जुल्म करोगे, और वला तुज़लमू, ना जुल्म किए जाओगे। तुम जुल्म कैसे, जुल्म करना क्या है, सूद लेना जुल्म है। और तुम पर जुल्म कैसे किया जाएगा कि अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि नहीं जी तुम्हारी असल रकम भी नहीं तुमने लेनी, बस अब तुम जाओ छुट्टी करो और तुम्हारा कुछ भी नहीं है, नहीं, जो तुम्हारी असल रकम है वो तो तुम्हें दी जाएगी, वो तो तुम्हारा हक है, ठीक है, वो तुम ले सकते, ना जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए, ठीक है, ना नुकसान दो ना नुकसान उठाओ, ठीक है, तो तुम अपनी असल रकम ले सकते हो। देखिए इस्लाम में ये नहीं है, तौबा कर लो इसके बाद तुम्हें ये सजा मिलेगी कि असल रकम भी तुम्हें नहीं दी जाएगी, ये नहीं है। अब बस तुम ये ले लो, लेकिन सूद को तुम छोड़ दोगे, सूद नहीं लोगे। وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, और अगर है कोई तंगी वाला, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, तो मोहलत देना है आसानी तक। अब क्या है, देखिए अब जब असल रकम लेने का टाइम आए तो इंसान कहता है जब सूद तो मिलना नहीं है, जब ये पता चल गया ना कि सूद नहीं मिलना, तो तुमने साल बाहर बाद मुझे देना था, नहीं मुझे तो अभी मेरे पैसे निकालो, जब यहां से कोई फायदा ही नहीं, क्या फायदा इसको देने का, मैं उसकी बजाय कहीं और इन्वेस्ट कर दूं, तो इंसान कहता है फौरन दो। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अगर वो तंगी वाला है, कौन है तंगी वाला, किसको कहा गया, यानी जिसने कर्ज लिया है, अगर उसके पास तंगी है, फनादिरतुन इला मैसरा, तो मोहलत देना है आसानी तक, उसके हाथ खुलने तक उसको मोहलत दो, यानी हाथ खुलने तक का मतलब क्या है, जब तक उसके पास पैसे नहीं आ जाते उस वक्त तक तुम उसको मोहलत दे दो। देखें कितना प्यारा माशरा हो जाए जिसमें लोग इतनी हमदर्दी रखने वाले हों कि जो है ना कोई बात नहीं, अगर अभी तुम्हारे पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम बाद में ले लेंगे, तुम्हारे पास जब आसानी हो जाए तब दे देना, कितना रहम का, कितनी इंसानी हमदर्दी का माशरा हो जाए वो। ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर मकरूज के पास नहीं है वो सब, तो बजाय उसको तंग करने के, उसका पीछा करने के, उसके दर पे हो जाने के, नहीं तुम उसको टाइम दो, मोहलत दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे ये बात महबूब हो कि अल्लाह उसे कयामत के दिन तंगियों से निजात दे, तो उसे चाहिए कि तंग दस्त को मोहलत दे या माफ कर दे। अगर आप चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको कयामत के दिन सख्तियों से निजात दे, उस दिन की सख्ती से, तो यहां पे वो जिसके ऊपर सख्त टाइम आया हुआ इस वक्त, उसे कर्ज वापस करना है, उसको मोहलत दे दे। हमारे यहां क्या होता है, आपको पता है कितने सारे कत्ल इस वजह से होते हैं कि वो कर्ज लेने गया, वो कर्ज उस वक्त से उसे मांग रहा था वापस दो वापस दो, वो दे ही नहीं रहा था। कभी लोग झूठ बोलते हैं, कभी लोग वादा खिलाफी, बस अगले महीने दे दूंगा, उसे अगले दे दूंगा, उसे अगले दिन, करते 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 ये हाल आ जाता है कि वो एक दूसरे को उठा के कत्ल ही कर देता। और इसी तरह आप ये देखें कि बैंक वाले, ये जो बैंकिंग का निजाम है, जो सूदी निजाम है, वो कहां से किसी को मोहलत देंगे, वो तो मोहलत देते ही नहीं, उनके आगे थोड़ी ही आते हैं कि वो कहेंगे हाँ जी हम थोड़ा सा अजर कमा लें, नहीं, ये नहीं है कि बैंकिंग जो है ना इस्लामिक नहीं हो सकती, इस्लामिक बैंकिंग भी हो सकती है, उसका क्या तरीका, कि जब बैंक जो है ना वो किसी लोगों के पैसे इतने सारे उनके पास पड़े होते हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करें पैसों को, और जो प्रॉफिट हो उसमें अपना हिस्सा रख के, जितना उन्होंने काम किया उस वो अपना एक यानी जो जायज मुनाफा है वो रख के बाकी लोगों को दे, और अगर नुकसान होता है तो उसमें भी फिर लोग जाहिर है नुकसान उठाएंगे। तब तो सही है, तब तो तिजारत है, लेकिन अगर वो अपने पास फिक्स रख लेते हैं और बैंक करता क्या, वो लोगों को आगे कर्जे देता जाता है सूद पे, तो वो फिर आराम हो गया। तो यहाँ पे क्या फरमाया कि तुम लोगों को ऐसे ना करो कि उनको तंग करने लगो, उनके पीछे पड़ने लगो, तुम उनको मोहलत दो। और अगर वान तसद्दकू खैरुल लकुम इनकुम तुम तालमून, और अगर तुम सदका कर दो, सदका करने का मतलब क्या है, माफ कर दो उसको, कहो कि मैंने तुम्हारे पर सदका कर दिया, चलो मैंने छोड़ा, वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें पता हो। हालांकि बजाहिर तो इंसान का नुकसान हो रहा है ना कि हाय सूद तो गया मेरा, तो असल माल भी गया, मगर कुरान फरमाता है ये बेहतर है। क्यों बेहतर है? दो वजह है इसकी। एक तो ये वजह है कि इस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के बाद तुम वो वक्त देखोगे जब ये इतना सा माल जो तुमने छोड़ा है ना, इसकी वजह से तुम्हारी आखरत की सख्तियां अल्लाह ताला दूर कर देगा, या जन्नत की नेमतें तुम्हें इसके बदले में मिलेंगी, तो तुम कहोगे ये तो बेहतर है, और दुनिया में भी तुम्हें बेहतरी नजर आएगी, इसलिए कि जो तुम्हारे पास माल है अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। और बरकत से फिर मैंने क्या बताया कि जरूरी नहीं है बरकत की वजह से माल बढ़ जाए कि अच्छा मेरे पास 1,000 था तो अब मेरे पास 2,000 हो गया, और अगर 2,000 नहीं हुआ तो आप तो कह रहे थे कि बरकत होगी, ये तो कुछ भी नहीं बरकत होगी, तो 1,000 का 1,000 ही पड़ा हुआ है। नहीं, बरकत ये नहीं होती कि क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है, बरकत जो होती है ना, कभी थोड़े माल से भी आपके इतने काम हो जाते हैं कि वो है बरकत, और हराम माल से कितनी स्पेंड करते हो फिर भी नहीं काम हो पाता, ठीक है। तो जिस माल में बेबरकती होती है उसका हाल क्या होता है, जिस मकसद के लिए खर्च करते हैं ना वो मकसद नहीं मिलता, या फिर बेकार चीजों में माल खर्च हो जाता है। तो इसलिए समझे बरकत की बात को। तो अगर तुम मोहलत देते हो, आसानी करते हो, तो उसके ऊपर भी इतना बड़ा अजर है कि अल्लाह ताला आखरत की आसानियां कर देता तुम्हारी। और अगर सदका कर देते हो तो फिर तो अजर ही अजर है। हदीस में है कि जो शख्स कयामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श का साया चाहता है ना, वो या तो ऐसे तंगी वाले शख्स को मोहलत दे दे या माफ कर दे। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। इसी तरह एक और हदीस में मुसनद अहमद की, कि जो शख्स मुफलिस आदमी पर अपना कर्ज वसूल करने में नरमी करता है और उसको ढील देता है, तो जितने दिन वो कर्ज की रकम अदा ना कर सके उतने दिनों तक हर दिन उतनी रकम खैरात करने का सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी को कर्ज दिया 1,000 डॉलर, अब उसको कहा 5 तारीख को देना, वो 5 तारीख को उसके पास नहीं थे वापस करने के लिए पैसे। अब जितने दिन गुजरते जाएंगे हर दिन मुझे 5,000 डॉलर खर्च कर सदका करने का अजर मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, हर रोज उतनी रकम खैरात करने का। और एक और रिवायत में आपने फरमाया हर दिन उससे दुगनी रकम करके सदका करने का सवाब मिलेगा। ये सुन के हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, पहले तो आपने हर दिन उसके बराबर सवाब करने का फरमाया था, आज आप दो मिसल फरमाते हैं। फरमाया हाँ, जब तक मियाद खत्म नहीं हुई मिसल का सवाब है, और मियाद गुजरने के बाद दो मिसल का, यानी फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को उसने वापस करना था, 5 को नहीं किया, उसको मोहलत दे दी मैंने कि भाई 10 को आप कर देना। अब 10 तारीख तक जितनी मोहलत दी है ना, तो फरमाया ना फनादिरतुन इला मैसरा, आसानी तक मोहलत दे दो। उसने कहा मुझे, मैं 5 को नहीं दे सकती, मैं 10 तारीख को दे दूंगी। अब ये जो 5 दिन गुजरते हैं, हर दिन 5,000 डॉलर सदका करने का अजर मिला, अब 10 तारीख भी गुजर गई, अब 10 तारीख को भी नहीं वो दे सका, तो अब क्या है, 5 नहीं 10,000 डॉलर सदका करने का हर दिन अजर मिलेगा, डबल का मिलेगा। इसको तो फायदा ही फायदा हो रहा है। देखो इस्लाम कितना प्यारा मुआशरा बना देता है, जिसमें लोग कितने एक दूसरे के साथ आसानी करते हैं। मुसनद अहमद की हदीस में कि ये मुसनद अहमद में नहीं, शायद ये मुझे नहीं पता कि कौन सी हदीस की किताब में, नहीं मुस्लिम में, मुस्लिम में, अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कर्ज एक शख्स के जिम्मे था। वो तकाजा करने को आते थे लेकिन ये छुप रहते थे और नहीं मिलते थे। एक दिन वो आए तकाजा करने के लिए, कर्ज मांगने लगे कि घर से एक बच्चा निकला, आपने उससे पूछा, उसने कहा हाँ ये घर में मौजूद है, खाना खा रहे हैं। अब अबू कतादा ने ऊंची आवाज से इन्हें पुकारा और फरमाया, मुझे पता है कि तुम घर में मौजूद हो, आओ बाहर आओ, जवाब दो। वो बेचारे बाहर निकले। आपने कहा क्यों छुप रहे हो? कहा हजरत बात यह है कि मैं मुफलिस हूँ, इस वक्त मेरे पास रकम नहीं है, इस वजह से शर्मिंदगी वजह से मैं आपसे नहीं मिलता। आपने कहा कसम खा, उसने कसम खाई। आप रोए और फरमाने लगे, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये अब हदीस मुस्लिम में है, कि जो शख्स नादार कर्जदार को ढील दे या अपना कर्जा माफ कर दे तो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श तले होगा, अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। इसी तरह एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदा अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह ताला उसे पूछेंगे बता मेरे लिए तू क्या नेकी लेके आया? वो कहेगा या अल्लाह एक जर्रे के बराबर भी कोई ऐसी नेकी मुझसे नहीं हुई जो मैं आपकी आगे पेश करूं, जिसकी जजा मैं मांग सकूं। अल्लाह ताला इससे फिर पूछेगा, वो फिर यही जवाब देगा, फिर पूछेगा वो फिर यही जवाब देगा। अल्लाह ताला एक छोटी सी बात, अल्लाह एक छोटी सी बात मुझे अलबत्ता याद पड़ती है कि तूने अपने फजल से मुझे कुछ माल भी दे रखा था, मैं तिजारत पेशा शख्स था, लोग उधार वगैरह ले जाया करते थे, मैं अगर देखता कि ये गरीब आदमी है और वादे के मुताबिक कर्ज अदा नहीं कर सकता तो मैं इसको कुछ और मुद्दत की मोहलत दे देता था, और जो अयालदारों पे सख्ती नहीं करता था, जो अयालदार होते ना बहुत फैमिली वाले कुंबे वाले बाल बच्चे बहुत हैं तो उनपे सख्ती नहीं करता था, अगर ज्यादा तंगी वाला किसी को पाता यानी किसी के बहुत ही हालात खराब हैं तो माफ भी कर देता था। अल्लाह ताला फरमाएगा फिर मैं तुझ पे आसानी ना करूं, मैं तो सबसे ज्यादा आसानी करने वाला हूं, जा मैंने तुझे बख्शा, जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, इस बात की वजह से अल्लाह ताला ने उसको माफ किया कि तू लोगों के ऊपर आसानी करता था, उनकी तंगी में उनको मोहलत देता था, वो कर्ज नहीं अदा कर पाते थे, आपको पता है कि इसके हालात है ही नहीं, ये दे ही नहीं सकता, तो फिर क्या है माफ ही कर दे, और आपको नहीं पता कि उसे माफ करने में कितना बड़ा अजर आपको मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुसनद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद आते हुए जमीन की तरफ इशारा करके फरमाया, जो शख्स किसी नादार पे आसानी कर दे या उसको माफ कर दे अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की गर्मी से बचा लेगा। सुनो, जन्नत के काम मुशक्कत वाले हैं और ख्वाहिश के खिलाफ है, दिल नहीं ना चाहता माफ करने का, लेकिन जन्नत के काम हैं ही ऐसे जो मुशक्कत वाले और जिसमें दिल ना चाहे, और जहन्नम के काम आसानी वाले हैं और ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक हैं, नेक बख्त वो लोग हैं जो फितनों से बच जाएं। इसी तरह तबरानी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुफलिस शख्स पर रहम करे और रहम करके अपने कर्ज की वसूली में इस पे सख्ती ना करे, अल्लाह भी इसके गुनाहों पर इसको नहीं पकड़ता यहां तक कि वो तौबा कर ले। इसी तरह एक और जगह है मुसनद अहमद में, जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी दुआएं कबूल की जाए और उसकी तकलीफ और मुसीबत दूर हो जाए, उसे चाहिए कि तंगी करने वालों तंगी वाले लोगों पर कुशादगी करे। यानी तंगी वाले कौन होते हैं? जिनका हाथ तंग है, नहीं दे सकते। मुस्तदरक हाकिम में, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले गाजी की मदद करे, या कर्जदार जो गरीब है उसकी मदद करे, या गुलाम जिसने लिख कर दिया उतनी रकम दे दूं तो आजाद हूं इसकी मदद करे, अल्लाह ताला उसे उस दिन साया देगा जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। तो ये मैंने कितनी सारी अहादीस आपको बताई। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने सारी अहादीस को ना सिर्फ उनका रिजल्ट बताना है, ये एक लाइन में लिखें कि जो शख्स किसी तंगी वाले को मोहलत देता है या उसको माफ कर देता है उसके लिए क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं। अब ये मैंने आपको बताई है ना हदीस में क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं उसके, अब मैं खुद नहीं बताऊंगी, आप लोग ये सारी हदीस में से सिर्फ रिवॉर्ड्स नोट डाउन करें कि जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल आपको देती हूँ कि अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा उस दिन जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा, ठीक है? तो और क्या क्या इसमें चीजें आई वो आप इंशाल्लाह लिखेंगे ताकि आपको इसका पता चले कि इसके रिवॉर्ड कितने बने, क्योंकि जब इंसान को इसकी रिवॉर्ड पता चलते हैं ना तो फिर देखिए माफ करना आसान हो जाएगा। और जहां पे देखिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ऐसे माफ कर रहा होगा वहां पे उस सोसाइटी का तो सोचे कैसी होगी वो। तो देखिए, कर्ज देने के कुछ असूल हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि कोई कर्ज मांगे तो खुशी से दे दो, कर्ज हसना दे दो। वो ना दे पाए तो मोहलत दे, बिल्कुल ही ना दे सके तो माफ कर दो। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम ये भी कहता है कि लोग कर्ज भी ना मांगने की आदत डाल लें, इसको भी डिस्करेज करता है। देखिए, जहां पे हमने अभी बात की थी ना कि देने को क्या इस्लाम कहता है, सदका करो सदका करो सदका, दूसरी तरफ लोगों को कहता है कि तुम भी हाथ ना उठाते फिरो कि हर एक के आगे हाथ मांगने के लिए फैला दिया। समझ आ गई बात? इसी तरह यहाँ पे कर्ज कोई मोहलत किसी को चाहिए तो उसको मोहलत दो, नहीं दे सकता तो माफ करो। दूसरी तरफ लोगों को कहा, अब तुम भी ये नहीं है कि तुम कर्ज ही मांगने पे तुल जाओ हर बात बात पे। अब ये छोटा घर है इसे बड़ा लेना, अब कर्ज ले लिया। अब गाड़ी है ये नहीं पसंद आ रही, नए मॉडल की लेनी है, अब कर्ज ले लिया। अब ये शादी करनी है, अब उसके ऊपर फजूल रसूमात है वो तो अदा करनी है, उनके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं, अब कर्ज ले लिया। तो कर्ज ऐसे नहीं है चीज। देखिए, कर्ज वो चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे जो कर्जदार होता था। कर्ज ऐसी चीज नहीं है पर आराम से बस कोई बात नहीं, कर्जा ही है ना, वापस कर देंगे। अगर ये वो बंदा जो मर गया होता था उसके जो उसने कुछ माल छोड़ा होता था उसमें से कर्ज अदा हो जाता था फिर तो नमाज जनाजा पढ़ा देते थे। अगर नहीं अदा होता था तो बाद में जब आपके पास माले गनीमत में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिस्सा मिलना शुरू हो गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसका कर्ज अदा करते थे, फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते थे। और अगर नहीं हो सकता था तो नहीं पढ़ाते थे, कि पूछते थे इसके ऊपर कर्ज तो नहीं है, इतनी बुरी चीज है कर्ज। और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से पनाह मांगा करते थे, इतना नापसंद करते थे। दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरम, गुनाह से और कर्ज से अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में रखना। तो एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कर्ज से आप इतनी मतलब क्यों पनाह मांगते हैं? फरमाया, जब इंसान कर्ज लेता है तो उसका हाल ये हो जाता है कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो पूरा नहीं करता। ऐसे ही हो जाता है, कर्ज ले लेता है तो फिर क्या करता है? जो उसे पूछेगा कब अदा करना है, नहीं जी फलां तारीख को कर दूंगा, फलां को कर दूंगा, आगे से आगे करता जाता, वादा करता है, नहीं अब बस कसम से मैंने अब इस दफा तो मेरा आपसे पक्का वादा है, फिर वो पूरा नहीं करता। और एक हदीस में यह है कि शहीद का भी हर गुनाह माफ हो जाता है सिवाय कर्ज के। यानी शहादत कितना बुलंद दर्जा है लेकिन शहीद के भी बाकी गुनाह माफ हो जाएंगे, कर्ज जो है ना उसके ऊपर फिर भी रहेगा, कर्ज का उससे सवाल होगा। और इधर देख लें आप, इनको ये बताया गया। तो देखें, अब ऐसी सोसाइटी के अंदर एक बंदा जब इंतहाई मजबूर हो जाएगा ना तभी वो कर्ज लेगा, और वो अगर इतना मजबूर होगा तो दूसरी तरफ कर्ज देने वाला उसको सहूलत देगा, इसलिए कि वो हदीस में है, जो तंगदस्त को सहूलत देगा अल्लाह ताला दुनिया और आखरत में उसको सहूलत देगा। ठीक है, अल्लाह दुनिया और आखरत में इसके लिए यानी आसानी कर देगा, उसको सहूलत दे देगा, ये कितना बड़ा इंसेंटिव है उसके सामने। तो ये ऐसा तो फिर कभी नहीं हो सकता कि कोई बेचारा कर्ज लेके फिर इतना मजबूर हो जाए कि खुदकुशी करने चला जाए, या उसका घर बार भी लूट जाए, उसका कारोबार भी खत्म हो जाए। बाज दफा ऐसे होता है तन के कपड़े तक छीन लिए जाते हैं, लोग सड़क पे आ जाते हैं दिवालिया होके, घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होगा फिर, जिस माशरे में ये माहौल हो वहां पे सोचिए हमदर्दी होगी, भाईचारा होगा, एक दूसरे के साथ कितनी एक मोहब्बत की फिजा होगी, ताल्लुकात कितने अच्छे होंगे, कितना अमन और सुकून होगा। और नहीं ऐसा होगा तो फिर आपको पता ही है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि गर्दनें काट दी जाती हैं फिर एक कर्ज लेने के लिए, वापस लेने के लिए। अब इसके बाद जो आखिरी आयत नजूल के एतबार से कुरान पाक की आखिरी आयत फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजाउन फीही इलल्लाह। देखें किस हुक्म के बाद ये आयत रखी गई, डर जाओ उस दिन से जब तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ, उसके दरबार में तुम्हें जाना होगा। याद रखो तुमको वापस लौटना है, यही नहीं बैठे रहना, कितने दिन तक तो तुम सूद की रकमें खा लोगे, कितने दिन तक तुम ये फायदे उठा लोगे। नहीं जी बेवा है, अब उसके पास कोई इनकम नहीं है, बैंक में रख के खाते हैं, ये है वो है। कितने दिन खाओगे ये, कितने दिन लोगों को लूटोगे, कितने दिन सूद के ऊपर कारोबार करके अब तुम ऐश करोगे। आखिर एक दिन तो तुम्हें वहां लौट के जाना है ना, जो अल्लाह की अदालत है। अल्लाह ताला ने देखें कैसे दुनिया से निकाल के हशर के मैदान में खड़ा कर दिया, जहां से कोई फरार नहीं हो सकेगा, भाग नहीं सकेगा। इस तसव्वुर से ही इंसान कांप उठता है। और सोच लें अगर ये आखिरी आयात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, तो सोचें अल्लाह ताला ने जो आखिरी हुक्म दिया वो किस चीज का दिया। तकवा, डर जाओ अल्लाह से, डर जाओ अल्लाह से। याद रखो उस दिन को भूलना ना, तुम्हें वापस जाना है। आखिरी नसीहत यही है, आखरत का कुछ होश करो। यही बैठे रहना है क्या तुमने? अब ये बात अगर जहन में रहे तो वही काम जो हमारे लिए करने इतने मुश्किल लगते हैं हमें, कि ये तो बस मैं कर ही नहीं सकती, इसके बगैर मैं कैसे जीऊंगी, है ये तो मेरे लिए बस जिंदगी मौत का मसला है, वो सारे ही काम आसान हो जाते हैं। मुश्किल लगते ही तब है जब हम ये सोच लेते हैं कि हमने यही रहना है, यही रहना, तो तब मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन जब ये सोच आ जाए ना कि पता नहीं आज की रात मेरी घर में गुजरेगी या कब्र में, तो फिर आसान हो जाता है। देख लो, सुम्मा तो वफा कुल्लु नफ्स मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर शख्स को जो उसने कमाई की। वो कमाई नहीं जो कोठियां और महल दुनिया में बनाए हुए थे, अमल की कमाई। उस वक्त तुम्हारे ये आमाल तुम्हारे काम आएंगे, तो इन आमाल को जमा करो, नेकियों को जमा करो। किसी को अगर तुमने माफ भी कर दिया तो तुम्हें लग रहा नुकसान हो गया, नहीं, तुमने तो नेकी जमा कर ली, उसी का उस दिन हिसाब होना, उसी के बदले तुम्हें वहां पे अजर मिलेगा। और ये कोठियां, ये मोहल्लात, ये गाड़ियां, ये प्लाट, ये बैंक बैलेंस किस काम आएंगे? ये तो फिरौन और कारून के पास भी थे। तो वहां पे तुम्हारे नेक आमाल हैं जो तुम्हें लेके पहुंचना होगा। फिर तुम दुनिया बनाने की फिक्र में क्यों लगे हुए हो, इसी को बढ़ाने की फिक्र में क्यों लगे हुए हो? कभी किसी पे जुल्म करते हो, कभी किसी से छीनते हो, अपना ही पेट भरने में क्यों लगे हो? तुम्हारे पर तो हर वक्त ये फिक्र तुम्हारे सर पे सवार रहनी चाहिए कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, तो वहां के लिए मेरे पास क्या है, मैं वहां क्या दिखाऊंगी? क्योंकि वहां पे वो दिया जाएगा जो तुमने किया उसका पूरा पूरा बदला। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, जुल्म नहीं होगा उनके ऊपर। जुल्म कैसे है? क्योंकि किसी इंसान के ऊपर या तो कोई जो गुनाह उसने ना भी किया वो भी उसके सर डाल दिया जाए। दुनिया में ये जुल्म होते हैं ना, मजलूम के ऊपर डाल दिया जाता है, बेगुनाह के ऊपर डाल दिया जाता है। या जुल्म ये भी हो सकता है कि किसी को उसकी नेकी का बदला ही ना मिले। नहीं, जो तुमने किया होगा पूरा पूरा दिया जाएगा, नाप तोल के दिया जाएगा। फिक्र ना करो, कहीं नहीं जाती तुमने अगर खलूस से दिल से कोई नेकी की है। तो वहां कामयाबी पाने के लिए सूद भी छोड़ो, माफ भी करो, कर्जदारों को मोहलत भी दिया करो। अल्लाह ताला हमें इन आयात के ऊपर अमल करने वाला बनाए, क्योंकि एक जमाना आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें जो सूद नहीं भी लेता होगा उसको भी उसका गुबार तो पहुंचेगा, यानी उसकी डस्ट तो पहुंचेगी। लोग सूद मतलब वैसे नहीं कि खुद खा रहे हैं, लेकिन उसके गुबार यानी उसका जो, जैसे आज के वक्त में अब अगर बैंक में आप नहीं पैसे रखते तो फिर क्या करेंगे, तो रखने होते, तो गुबार तो पहुंचा ना, तो गुबार पहुंचेगा, ऐसा होगा। ओके, पूरा निजाम ही उसका चल रहा है। तो कई चीजें तो हैं उनसे तो इंसान बच ही नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं वो उनपे तो आप हाथ रोक सकते हैं ना। अब कुछ इस चीज के अंदर मैं थोड़ी सी बातें यहां पे ये करना चाहूंगी जो इसमें इतराजात किए जाते हैं। बाज लोग ये कहते हैं जरूरत के तहत लिया जा सकता है सूद, जरूरत अगर है, जैसे घर लेना है तो एक के लिए लिया जा सकता है, एक से ज्यादा के लिए हराम है। तो ये कहां से हमने डिफाइन किया? हमने जरूरत की बात तो यही पढ़ी थी कि हराम उस वक्त ही जायज है जब जिंदगी मौत का मसला है ना, आदि ना कोई उसका वो ना करने वाला हो, जो उसकी आदिन था ना कि जो सरकशी ना करने वाला हो, बागिन ना हो, बागी ना हो, ऐसे इंसान के लिए वो सिर्फ उतनी सी अमाउंट, उतनी सी चीज लेना जायज है जो जो ऐसे मकाम पे आ गया हो कि अगर ना करेगा तो मौत है। तो ये फिर हम बस कहां से फतवे ले आते हैं पता नहीं। फिर बाज लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जाती सूद था, तिजारती सूद नहीं था। ऐसी बात नहीं है, जाती सूद भी था, तिजारती सूद भी था। उस जमाने में तिजारत के ऊपर भी सूद दिया जाता था। बाज लोग कहते हैं आज का सूद वो नहीं है जो उस वक्त का होता था, उस वक्त तो लोग तंग करते थे तो इसलिए। तो आज बैंक वाले क्या करते हैं? वो तो उससे भी ज्यादा बेरहम है। जब लोग दिवालिया होते हैं तो क्या होता है, उनकी जायदादें, कारोबार सब नीलाम हो जाते हैं। फिर बाज लोग कहते हैं अगर दोनों पार्टीज राजी हों तो फिर कोई हर्ज नहीं है। तो गलत काम पे अगर दोनों पार्टीज राजी भी हो जाएं तो तब भी वो जायज नहीं हो जाता। जिना में दोनों रजामंद हो कि जिना करना है तो क्या जायज हो गया? फिर बाज लोग कहते हैं कर्जा लेने में तो किसी पे जुल्म नहीं हो रहा। तो कर्ज ले रहा है वो तो अपना कारोबार कर रहा है। नहीं, अगर मकरूज कर्जखा की रकम को दबा ले तो जो कर्ज देने वाला है उसके ऊपर जुल्म हो गया। या उलट भी अगर हो जाता है, जिसने कर्ज लिया हुआ है उसके ऊपर भी जुल्म हो सकता है जब उसको नुकसान हो और उसको फिर भी पे करना पड़ता है तो उसको भी उसके ऊपर भी है। अदरवाइज दूसरा जुल्म कर रहा होता है जब उससे ज्यादा सूद खींच रहा होता है। दोनों सूरतों में जुल्म है, दोनों सूरतों में हो सकता है। बाज कहते हैं कम सूद लेना ठीक है। तो देखें जिस चीज की ज्यादती हराम है, यानी ज्यादा क्वांटिटी में वो हराम है, उसकी कमी भी हराम है। अब शराब ये नहीं है कि 2 घूंट पी लें तो वो हलाल है, 10 घूंट पिए तो हराम है, ऐसा नहीं है। इसी तरह बाज लोग कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो उसमें काफी मुद्दत के बाद, जब फिर शुरू में तो पैसा नहीं निकलवा सकते, तो काफी मुद्दत के बाद जो पैसे मिलते हैं क्या वो सही है? तो वो उसके ऊपर भी तो सूद ही मिलता है, वो भी सूद ही है। चेकिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट ना रखें। बाज उलमा ने कहा सेविंग रख लें, उसमें जो इंटरेस्ट आता है उसको गरुबा में दे दें, क्योंकि हमारे मुल्कों से भी तो ये सूद लेते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि चेकिंग ही अकाउंट सिर्फ रखा जाए। क्या पता कल को हम मर जाए, हमारे बच्चों को तो नहीं पता होगा कि हमारे माँ बाप की क्या नीयत थी, वो भी कहेंगे हमारे माँ बाप का भी सेविंग अकाउंट था, हम भी रखते हैं। अब ये कैसे, ये सारी चीजें कैसे खत्म होंगी, कैसे होगा? एक दिन में तो नहीं हो सकता। इसके लिए फिर क्या है, सबसे पहले तो लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करनी जरूरी है कि ये हराम है, ये गलत है, ये और सूद के बगैर भी चल सकती है दुनिया। अब हमारे तो ये समझा जाता है ना, सूद के बगैर तो कुछ है ही नहीं, सूद के बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। सूद के बगैर भी निजाम चल सकता है। हाँ, हमारे लोग, हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे वो बैठ के इसके ऊपर बात करें, इस चीज के ऊपर देखें तो रास्ते निकल सकते हैं। हाँ, मगर नियत ये हो कि हाँ हमने इस हराम से बचना है, तो इस चीज की अवेयरनेस पैदा की जाए, इस चीज के लिए लोगों को एजुकेट किया जाए, तो तब बात है। हाँ, बस ये है कि फमाने तुर्रा वाली बात है ना, कि जो बहुत ही मजबूर, बहुत ही मजबूर, तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो भी किसी के ऊपर नहीं कोई फतवा दे सकता। तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि किस चीज में किसको वो माफ कर दे, किसको नहीं। हम तो नहीं इस चीज का कह सकते। तो इस चीज को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अब एक और सवाल जो बहुत ज्यादा लोगों के जेनों में होगा कि इस्लामिक आजकल वो है क्या, फाइनेंसिंग और ये सब है, तो इसका क्या? तो सूद का तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि सूद क्या चीज होती है, खुद भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग islamqa.com पे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे मुफ्ती होते हैं। मैं नहीं किसी चीज की मिजाज के मैं फतवे देने लगूं कि फलां वाली सही और फलां नहीं सही, क्योंकि इतनी सारी अब इस्लामिक फाइनेंसिंग भी आ गई हैं और उसमें बहुत डिटेल्स हैं, तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमें सूद जैसी लानत से महफूज रखे, अल्लाह ताला इस बुराई से हमें भी हमारी नस्लों तक को भी महफूज रखे। अल्लाह ताला वही हमें हमारे तक पहुंचाना, या अल्लाह वही हमें रिस्क देना जो इन चीजों से पाक हो, या हराम से पाक हो। हराम के साथ ना तो दुआएं कबूल होती, ना इबादात कबूल होती है, ना नेकियां कबूल होती। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने इंशाअल्लाह।
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون